नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वायनाड में मरने वालों की संख्या 300 से अधिक हो चुकी है, लेकिन यह संख्या इस तबाही की एकमात्र तस्वीर नहीं बनाती। केरल सरकार की तरफ से मरने वालों की जो सूची जारी की जाती है, उसमें एक कॉलम अलग से शरीर के उन हिस्सों के लिए बनाया गया है जो अभी तक बरामद किए जा रहे हैं। किसी का हाथ, किसी का पांव, किसी का सर, किसी का धड़, किसी की हथेली, ऐसे 134 हिस्से बरामद किए गए हैं। 600 से अधिक लोग घायल हैं और 300 से अधिक लापता। 2500 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। हमने वैसे काफ़ी सावधानी से वीडियो का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी इन तस्वीरों को देखकर आप विचलित हो सकते हैं। वायनाड की त्रासदी किसी भी स्तर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और ऐसी अनेक आपदाओं की पुनरावृत्ति है, दोहराव है, जो कभी हिमाचल तो कभी उत्तराखंड में घटती रहती हैं। इस समय भी घट रही हैं और कुछ दिन पहले भी घट चुकी हैं। हम और आप आए दिन ऐसी तबाही के वक्त का वीडियो वायरल होते देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। इस वायरल बाजी ने त्रासदी के प्रति हमारी संवेदनशीलता को, जिज्ञासा को खत्म कर दिया है। हमें लगता है कि वीडियो देख लिया, उसे फॉरवर्ड कर दिया और सबका काम हो गया। सरकारें भी न तब ध्यान देती थी और ना अब ध्यान देती हैं। पर आपने नोट किया कि वायनाड की तबाही के वीडियो वायरल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तबाही के वक्त किसी को पता ही नहीं चला। आपदा ने मौका ही नहीं दिया ना भागने का, ना वीडियो बनाने का। यह कार चलियर नदी के रास्ते में गाद में धंस गई। यह तबाही की उन साफ सुथरी तस्वीरों में से है जिसे देखकर आप तुरंत विचलित नहीं होते हैं, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं कि इसी कार को हासिल करने के सपने के लिए हमने कितनी नदियों और पहाड़ों को बलि पर चढ़ा दिया। यह जीप तो अपने घर के ही गैराज में पार्क है। घर किसी समृद्ध व्यक्ति का लगता है, मगर जिंदगी भर का सारा हासिल कीचड़ मिट्टी में मिल चुका है। यह किसी एक व्यक्ति के दोष का परिणाम नहीं है, बल्कि विकास यात्रा में उन करोड़ों लोगों का है जिन्होंने प्रकृति की कीमत पर ही सब कुछ हासिल करने की जिद पाल ली। कई साल से भारत में पहाड़ों के धसने पर कारों के बह जाने के कितने ही वीडियो वायरल हो रहे हैं, और हम तब भी रुककर नहीं सोचते कि इस त्रासदी को रोकने के लिए क्या करना होगा। कब तक हम इसकी चपेट में आते रहेंगे और इस तरह से लोग मारे जाएंगे। इन गाड़ियों की हालत से आप समझ सकेंगे कि 30 जुलाई को वायनाड में क्या हुआ होगा। यह जो पत्थर देख रहे हैं, बोल्डर है। इस आकार के बड़े बड़े चट्टान तेज रफ्तार से गिरते हुए गांव में चले आए। इन चट्टानों के रास्ते में जो गाड़ियां आई होंगी, जो पेड़ आए, जो सीमेंट के बने मजबूत मकान आए, सब के सब चूर चूर हो गए। आधुनिक जीवन के सपने के सारे आइटम प्राकृतिक आपदा के इस आधुनिक रूप के सामने अब आदिम नजर आ रहे हैं। भूस्खलन का मलबा 8 किलोमीटर तक बहता गया और चलियर नदी की एक उपनदी में जा मिला। द हिंदू में अब्दुल लतीफ नाहा की 3 अगस्त की रिपोर्ट है। उसके अनुसार 86,000 स्क्वायर मीटर यानी करीब 21 एकड़ से भी ज्यादा जमीन मलबा हो गई, मलबे में दफन हो गई। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं वो त्रासदी के चौथे दिन का है, जिसे हमारे लिए टीए अमीरुद्दीन ने रिकॉर्ड किया है। पहाड़ जब धंसता है, खिसकता है, तो उससे छिटक कर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े और मिट्टी गाद किस रफ्तार से कहां तक जा सकते हैं, वायनाड की त्रासदी से पता चलता है। 8 किलोमीटर तक मलबा चला आया। घाटी में बसे 3-3 गांव तबाह हो गए और दूर दूर तक मलबा फैल चुका है। वेल्लरीमला गांव की 2 बस्तियां लापता सी हो गई हैं। सैकड़ों घर मिनटों में बह गए और ध्वस्त हो गए। कई घरों का नामो निशान तक नहीं। तबाही के बाद किन तस्वीरों से आपको यह पता नहीं चलेगा कि जहां मलबा बिखरा है, बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, वहां कभी पक्के मकान बने होंगे। और जो मकान बचे हुए हैं उनकी ऐसी हालत है, किसी की छत गायब है तो किसी की सामने की दीवार गायब हो चुकी है। उत्तर भारत के लफंगे नेता इस बुलडोजर के आने पर कितने खुश होते हैं कि अब किसी का घर धर्म के आधार पर गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ इस बुलडोजर को पता ही नहीं इन घरों का क्या करें जो अब न गिराने लायक हैं न बचाने लायक। अब्दुल लतीफ नाहा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, वेलरीमला गाँव के मुंडकई और चूरलमला बस्तियां कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। मिनटों में 200 घर बह गए। जो मकान खड़े रह गए उनके भीतर कुछ भी नहीं बचा और अब वे इसी मलबे का हिस्सा हैं। अल जजीरा के लिए अमीरुद्दीन ने लिखा है कि एक बार नहीं बल्कि पहाड़ कई बार धंसा, ऊपर से पेड़, चट्टान और गाद नीचे आ गया। चूरलमला, अट्टामला, मुंडक्की गांव की आबादी 4,500 से अधिक की है। इस गांव के किनारे बहने वाली एक शांत सी नदी चिलियर काल बन गई और एक ही रात में उठकर गांव की इन बस्तियों को लील गई। इस नदी ने इतनी तेजी से अपनी धारा बदली कि उसके प्रवाह के रास्ते में जो कुछ भी आया गायब हो गया। बहुत से शव 25 किलोमीटर दूर बरामद हुए हैं। पानी का वेग कितना तेज रहा होगा, पत्थरों की रफ्तार कितनी तेज रही होगी कि 25-25 किलोमीटर दूर तक लाशें बहकर चली गईं। इस रसोई की हालत बता रही है कि प्राकृतिक आपदा किसी के भी सारे सपनों और जीवन के तमाम इंतजाम को पल भर में खाक कर सकती है। यहाँ के किसी भी बचे हुए घर का हाल देखिए, आपको वो सारी रिपोर्ट याद आएगी और वो यादें आपको सताएंगी जो पहाड़ों के धसने को लेकर हर साल बनती रही हैं और जिन्हें हम अनदेखा कर नदी के रास्ते में मकान बनाते रहते हैं। राहत बचाव कार्य में लगे लोगों का कहना है, चट्टानों के नीचे कितने शव दबे होंगे कहना मुश्किल है, कितने मकान दबे होंगे कहना मुश्किल है। अब इन बड़े बड़े बोल्डरों को हटाना किसी चुनौती से कम नहीं, शायद कभी हटाया भी ना जा सके। वायनाड केरला के बेहद खूबसूरत इलाकों में से एक है। जिस गांव के ऊपर पहाड़ धंसा है वह भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। जिसकी मिट्टी उर्वर उपजाऊ मानी गई, आज वहां केवल बोल्डर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। यहां कुत्ते भटक रहे हैं, अपनी पुरानी गलियों को खोज रहे होंगे और मालिकों को, शायद किसी बच्चे को भी जिनके साथ उनकी दोस्ती यारी रही होगी। कोई बच्चा अपने इस खिलौने को खोज रहा होगा या अब वह बचा ही नहीं होगा। क्या हम हमेशा ही इन आपदाओं के बाद सामान्य होते रहेंगे? जीवन भर की पूंजी, कमाई सब मिट्टी में बदल जाती है। परिवार के परिवार समाप्त हो गए, जो बच गए हैं वो हमेशा इन आपदाओं को ढोते रहेंगे। फिर भी एक बार के लिए ही सही, इतने बड़े देश में हमने कोई सबक क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं कुछ किया जिससे लगे कि हम सतर्क हुए हैं। वायनाड बहुत दूर है मगर दिल्ली में ही एक माँ अपने बेटे को गोद में लिए नाले में समा जाती है और 3 बच्चे लाइब्रेरी के भीतर डूबकर मर जाते हैं। विकास की आलोचना तब होती जब हमने तरीके से विकास किया होता। यहाँ तो कहीं भी नजर दौड़ाइए आपको धांधली की बुनियाद पर बसी बस्तियां नजर आएंगी। जहां रहते हैं वहीं देख लीजिए कि वहां पर क्या इंतजाम है। किसी तरह से नियमों का मजाक उड़ाया जाता है। हम केवल प्रकृति को ही नष्ट नहीं कर रहे बल्कि विकास के नाम पर अपने अपने मोहल्लों में आपदा की प्रकृति विकसित करते जा रहे हैं ताकि कोई करंट लगने से मर जाए और कोई हाई टेंशन वायर के गिरने से जल जाए। चलियर नदी दक्षिणी वायनाड के इन गांवों की खूबसूरती थी। यह तस्वीर तबाही के बाद की है, इसलिए नदी के रास्ते में पहाड़ से गिरकर आई चट्टानें फैल गई मगर नदी को कोई नहीं रोक सका। वो अब भी बहती जा रही है। इस वक्त थोड़ी बेजान और सामान्य सी लग रही है लेकिन बारिश वाली रात खूंखार हो गई थी। इसका प्रवाह ऐसा रहा होगा जिसने कारें, मकान, चट्टान सब तिनके की तरह उड़ते बहते चले जा रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखकर अनुपम मिश्र का कहा हुआ फिर से याद आया, तुमने अपने जीवन में नई नदी बनते देखी है? हम में से किसी ने नहीं देखी। नदियों का रास्ता करोड़ों वर्ष पहले का बना है। उनके करोड़ों वर्ष के अनुभव को हम 100 साल के डेटा से नहीं नाप सकते। नदियां चाहे जितनी सूख जाएं, मगर किसी बारिश के कारण एक क्षण में जी उठती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बीमल पटेल रायसीना हिल्स पर मोदी नदी बना देते, लेकिन उस वास्तुकार से संसद की छत से पानी का चूना नहीं रुका। तो आपके विज्ञान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पहाड़ों को धसने से और चट्टानों, घरों को उड़ा देने से रोक सकती है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नदियों के प्रवाह का गियर बदल दे और ब्रेक लगा दे? आप ऐसे किसी नेता को जानते हैं जिन्हें परमात्मा ने नदियों का गियर बदलने और ब्रेक लगाने के सामान के साथ धरती पर भेजा है? तो नेता को नहीं, उस परमात्मा को मेरे पास भेजिएगा। यहाँ सेना ने पुल तो बना दिया, लेकिन इसके पहले जो पुल यहाँ था उसका नामो निशान मिट गया। इसी के जरिए चुरामला का संपर्क उन दो गांवों से रहा जिसके सैकड़ों घर अब लापता हैं और ध्वस्त हो गए। इस पुल के टूटने के कारण नुकसान बहुत बड़ा हो गया, लोगों के भागने का रास्ता बंद हो गया। अगर पुल सलामत होता तो शायद कईयों की जान बच जाती। केरला का वायनाड उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी सवाल कर रहा है कि हम कितनी जानों को खोने के बाद, बस्तियों के उजड़ जाने के बाद आपदाओं को लेकर सतर्क होंगे। हम क्यों नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को सीमित और संयोजित कर सकते हैं, बेहतर प्लानिंग क्यों नहीं कर सकते? 2047 किसी ने नहीं देखा, मगर उस समय के लिए प्लान बना रहे हैं और आंखों के सामने जो समस्याएं हैं वो नजर नहीं आ रही। सपने को आप पहाड़ पर रखकर देखिए या आसमान में टांग कर देखिए, एक दिन देखना जमीन पर ही पड़ता है, क्योंकि वही खिसकती है और उसी पर आप गिरते हैं। अमृतकाल चल रहा है और नाले का पानी संभल नहीं रहा, मतलब बोगसबाजी की भी इंतहा होती है। आबादी के बड़े हिस्से को 3 वक्त का भोजन नहीं मिल रहा, लेकिन चल अमृतकाल रहा है। कोई समाज कितना फ्रॉड हो सकता है कि बैठकर इस तरह के भाषण सुने जा रहा है? अब्दुल लतीफ नाहा और अमीरुद्दीन की रिपोर्ट में ऐसे कई लोगों का हाल दिल दहला देने वाला है जो अपने बच्चों को, माँ बाप को खोज रहे हैं। सत्तार परिवार के 25 सदस्य लापता हैं। 56 साल के उबैस अपनी बेटी, दामाद और नाती को खोज रहे हैं, मगर किसी का पता नहीं चल रहा। अब्दुल लतीफ नाहा ने लिखा है कि कोई अपने सर पर अपनी 8 महीने की पोती को बांधकर गर्दन तक आ चुके मलबे में निकला है। बचाने की कोशिश होगी मगर नहीं बचा पाया होगा। रिपोर्ट में लिखा है, लोग पानी की भयंकर आवाज से रात को 1 बजे उठ गए, लेकिन बहाव इतना विकराल था कि भूस्खलन होने से पहले सुरक्षित इलाकों में नहीं जा पाए। क्षेत्रीय व्हाट्सएप ग्रुप में मदद की गुहार लगाते रहे। उनके आखिरी क्षण और जीवन के लिए छटपटाहट ऑडियो मैसेज में अब दर्ज है। आखिरी वक्त की उन आवाजों को सुनने की हिम्मत किस में बची होगी? कोई इन अस्पतालों में आकर खोज रहा है तो कोई राहत शिविरों में। 4 दिन पहले की एक खुशहाल जिंदगी तबाह हो चुकी है। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी इनके बीच आकर चुप नजर आते हैं। इन लोगों की सोचिए, वो अपनी तबाही किस हद तक बयां कर सकते हैं और राहुल गांधी या कोई भी नेता कहां तक सुन सकता है? कहना और सुनना दोनों ही यहां मतलब खो चुका है। कमाल उन लोगों का है जो अलग अलग संगठनों के हैं, धार्मिक भी हैं और राजनीतिक भी, यहां जुट गए हैं राहत और बचाव करने में। काश यही जागरूकता, यही एकता, यही तत्परता उस समय भी नजर आती जब प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और उनका स्वागत किया जाता है। केरला ने ऐसी तबाही 2018 में देखी जब 50 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 480 लोग मारे गए। वायनाड में 29 जुलाई तक 73% वर्षा की कमी थी, लेकिन एक दिन बाद वहां 500% से ज्यादा बारिश हो गई, यानी पूरे साल की करीब 30% वर्षा मात्र 20 दिनों में हो गई। मौसम विभाग कहता है 30 जुलाई को साल की 6% वर्षा कुछ घंटों में हो गई, पहाड़ धंसने लग गए और नदी में प्रलय आ गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 30 जुलाई को वायनाड के वेत्री में 28 सेंटीमीटर यानी 280 mm वर्षा हुई। 24 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा भीषण भारी वर्षा की श्रेणी में आती है, जो कि जानलेवा मानी जाती है। इसरो की रिमोट सेंसिंग लैब ने मार्च 2023 में लैंडस्लाइड एटलस नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसरो की वेबसाइट पर रिपोर्ट मौजूद है। भारत में भूस्खलन से संकटग्रस्त 147 जिलों की सूची है, जिसमें वायनाड 13वें नंबर पर है। पर्यावरण पत्रकार हृदेश जोशी ने अपने वीडियो में बताया है कि उत्तराखंड के 13 संकटग्रस्त जिलों के नाम इस सूची में। क्या आप जानते हैं कि हृदेश के वीडियो को मात्र 2,500 लोगों ने देखा? जरूरी सवाल, जरूरी वीडियो लोग देखते नहीं। हर किसी को मसाला चाहिए, रील चाहिए। वायनाड समेत केरल के 14 जिले इस सूची में शामिल हैं, जिनमें से 4 में भूस्खलन का खतरा वायनाड से भी ज्यादा बताया गया है। यह 4 जिले हैं थ्रिसुर, पालक्काड़, मल्लापुरम और कोईकोड, जहां वायनाड से भी ज्यादा खतरा है। जुलाई 2022 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 2015 से 2022 के बीच लैंडस्लाइड की कुल 3,782 घटनाएं हुई। इनमें से 2,239 घटनाएं सिर्फ केरला में हुई। ये हाल है केरला में लैंडस्लाइड का। एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि 1985 से 2020 के बीच भारत में आई 10 सबसे भयंकर बाढ़ में से 7 ऐसी एटमॉस्फेरिक रिवर या आसमानी नदी फिनोमेना की वजह से आई थी। पर्यावरण वैज्ञानिक एक फ्लाइंग रिवर या एटमॉस्फेरिक रिवर या आसमानी नदी फिनोमेना की बात करने लगे हैं। हो क्या रहा है कि समंदर का पानी गर्म हो रहा है, उसमें से उठती वाष्प हवा में जाकर घने बादलों की धारा में बदल जाती है और जमीन की ओर बढ़ती है। ऐसी किसी फ्लाइंग रिवर में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन से भी 2 गुनी पानी की मात्रा होती है। अध्ययन बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते हिंद महासागर का पानी गर्म हो रहा है और इसमें बनने वाली ऐसी फ्लाइंग रिवर भारत में मॉनसून को प्रभावित कर रही है। यह वीडियो लंबा है और ऐसे मामलों में लंबा वीडियो धीरज के साथ आखिर तक देखने की आदत डालिए। वायनाड के संकट से पहले भी पश्चिमी घाट को लेकर विस्तृत अध्ययन मौजूद है। लैंडस्लाइड को लेकर नक्शे बन चुके हैं, यानी सबको सब कुछ पता है, लेकिन सतर्कता के नाम पर सायरन, घंटी और एनडीआरएफ की टीम यही उपाय है। आजकल अलर्ट नोटिस जारी होने लगा है, इससे क्या होता है? अलर्ट को लेकर भी झूठ बोला जाने लगा है। गृहमंत्री ने लोकसभा में केरला को लेकर जो बयान दिया, उसे द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बिंदुवार चुनौती दी है। दिल्ली में ही भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है, यहीं पर बारिश के अलर्ट से क्या हो जाता है? ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हो गया? इस अलर्ट के अनुसार जो चुनौतियां हैं, क्या उसका मुकाबला करने के लिए हमारे शहरों में पर्याप्त साधन हैं? आपको भी पता है जवाब ना में है। अलर्ट जारी करना जवाबदेही से बचने का एक नया रास्ता हो गया है। जयराम रमेश ने राज्यसभा के चेयरमैन को अमित शाह के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है। अमित शाह ने राज्यसभा में जानकारी दी थी कि केरला की सरकार को अर्ली वार्निंग सिस्टम से मिली जानकारी के आधार पर चेतावनी दी गई थी, मगर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू अखबार ने इन दावों की जांच पड़ताल की है कि यह झूठ है और ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं दी गई। मौसम को लेकर जो चेतावनी जारी की गई, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई का नोटिस नहीं था। द हिंदू अखबार ने 18 जुलाई से 29 जुलाई के भारतीय मौसम विभाग के प्रेस रिलीज और चेतावनियों का विश्लेषण किया है। दिखाया है कि इस दौरान छपी 6-7 प्रेस रिलीज में एक बार भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया। अधिकतर येलो वॉच अलर्ट की बारिश की चेतावनी थी, जिसमें सरकार से खास तौर पर एक्शन लेने के लिए नहीं कहा जाता है। जयराम रमेश ने कहा है कि सदन को गुमराह करना प्रिविलेज का उल्लंघन है और सदन की अवमानना है। हम पश्चिमी घाट को लेकर भी बात करेंगे। आज अगर काफी नहीं कर पाए तो फिर किसी और वीडियो में करेंगे। पश्चिमी घाट का 18% हिस्सा केरला में आता है, बाकी हिस्सा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु में आता है। वायनाड केरला के इलाके में है, पश्चिमी घाट के इलाके में। हर साल मानसून की शुरुआत होते ही यहाँ भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक माधव गाडगिल ने 2011 में एक रिपोर्ट तैयार की। गाडगिल पैनल ने पश्चिमी घाट के 64% हिस्से को अत्यधिक, अधिक या सीमित रूप से संवेदनशील बताया। इसके 2 सबसे संवेदनशील इलाकों में खनन प्रदूषण फैलाने वाले और बड़े स्केल पर चल रहे विकास कार्यों को रोकने की बात कही, मगर जिन 6 राज्यों में से पश्चिमी घाट गुजरता है, उन सभी राज्यों ने लागू करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस, सीपीएम, धार्मिक गुरुओं ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और समिति बनी। इस समिति ने गाडगिल पैनल के कई सुझावों को कमजोर कर दिया, मगर इस पैनल ने भी कहा कि केरला के 13,000 से अधिक किलोमीटर हिस्से को संवेदनशील घोषित कर दिया जाए। राज्य सरकार के दबाव के चलते सिर्फ 10,000 किलोमीटर हिस्से को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। 2022 के एक अध्ययन के अनुसार वायनाड के इलाकों में 1950 से 2018 के बीच 62% जंगल खत्म हो गए। 1950 में वायनाड का 85% हिस्सा जंगल था। माधव गाडगिल ने द हिंदू से कहा है कि वायनाड की घटना मानवीय थी, यानी इंसान जिम्मेदार है। इसके पीछे कारण यही है कि केरला की सरकार ने पैनल की कोई बात नहीं मानी। लंबा वीडियो देखने के लिए एक खास किस्म के धीरज की जरूरत होती है। आपको पूरा समझना पड़ता है, तभी आप जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे। मस्ती में छोटे छोटे रास्ते से जीवन का समाधान मत निकालिए, निकलेगा भी नहीं, फंस जाएंगे। वायनाड के जंगल गायब हो गए। जंगलों के गायब होने से पहाड़ों को कमजोर होना था, ये बातें सब जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भी आपकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया और बाद में केवल अत्यधिक बारिश का बहाना देकर लोगों से झूठ बोला गया। इस स्तर की तबाही के लिए सिर्फ बारिश जिम्मेदार नहीं हो सकती। सालों साल चलने वाले वैध और अवैध खनन कार्य, विकास कार्य, निर्माण कार्य, पेड़ों को काटने के प्रोजेक्ट पहाड़ों को ढीला बना रहे हैं। उन इलाकों में बसने वाले गांवों को पता भी नहीं चलता कि उनके पैरों के नीचे से उनकी जमीन की स्थिरता खत्म कर दी गई है और फिर एक दिन अचानक प्रलय का सामना करना पड़ता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 1 जून के बाद दिल्ली में जितनी बारिश हुई उसकी आधी मात्रा केवल 3 दिनों में हुई। हिंदुस्तान टाइम्स में अभिषेक झा ने लिखा है कि 1970 से 2020 के दौरान बारिश का औसत निकालेंगे तो उसके मुकाबले अब कम दिनों में ज्यादा बारिश होने लगी है। पहले की तुलना में 50% बारिश अब कम दिनों में सिमट गई है, यानी बारिश और भीषण होने लगी है। एक दिन में 100 दिन की बारिश हो जाए, 30 दिन की बारिश हो जाए तो इस तबाही को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे शहर अब जैसे बसने थे, जितने खराब रद्दी घटिया होने थे अब हो चुके हैं। इनकी बुनियाद में इतना फ्रॉड है कि 4 दिन बहस चलेगी फिर कुछ नहीं होगा और सारे शहरों को स्मार्ट घोषित कर दिया जाएगा। डाउन टू अर्थ ने लिखा है कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है वायनाड और यहाँ कॉफी, धान, काली मिर्च जैसी फसलें होती हैं। जलवायु में मामूली परिवर्तन से भी इन फसलों को नुकसान हो सकता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है, इसलिए इसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जाना था। एक पायलट प्रोजेक्ट 5 जून 2016 को स्थानीय सरकार के स्तर पर लॉन्च किया जाता है, मगर ऐसी योजनाएं परवान कहाँ चढ़ती, आप भी जानते हैं। पायलट प्रोजेक्ट पायलट ही रह जाता और विमान का पता नहीं चलता कब उड़ेगा। जलवायु परिवर्तन की बात कीजिए तो राजनीतिक दल विरोध करने आ जाते हैं। एक तबका ऐसा बन गया है जिसे खुश करने के लिए नेता भी पर्यावरण संकट का मजाक उड़ाते हैं, विकास विरोधी बताते हैं, लेकिन उनके पास भी इन संकटों का कोई समाधान नहीं और ना ही कारण है। कारण भी नहीं बताते कि क्यों इतना बड़ा पहाड़ धंस गया और जिंदगियां तबाह हो गई। केवल भकोसने और अपने जीने के सिद्धांत पर जीने वाला यह तबका झट से जलवायु परिवर्तन को नकार देता है, लेकिन वैज्ञानिक कारण भी ठोस रूप से लोगों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। केवल आबादी वहां बस गई है, इस वजह से ही आप सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं डाल सकते। और भी कारण है जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए। एक यूट्यूबर के तौर पर इस तरह की रिपोर्ट बहुत मुश्किल है। वीडियो के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तो बात ही नहीं करता। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आने वाली है? मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि इसका मकसद हम जैसे यूट्यूबर की आवाज को बंद करना है। इसके ऐसे ऐसे प्रावधान बताए जा रहे हैं कि इसके बाद यूट्यूब चलाना मुश्किल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। गोदी मीडिया की झूठी सूचनाओं को आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? क्या सरकार यह चाहती है कि स्वतंत्र आवाजों वाले YouTube चैनल बंद हो जाएं और भारत की आबादी को हांक कर गोदी मीडिया देखने के लिए मजबूर किया जाए? कभी आपने सोचा है कि अगर YouTube पर हम जैसे लोग नहीं होते तो आप क्या देखते? क्या सरकार यही चाहती है कि आप गोदी मीडिया का सड़ा हुआ नफरती कंटेंट ही देखें? इसे कोई भी नागरिक कैसे स्वीकार कर सकता है? सूचनाओं की आपदा आपके ऊपर आने वाली है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार,